कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय भक्त्या विहीनापराधमुक्त्यै चित्तास्य कामार्थाय कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते च यं प्रप्रजं समनुचेतमुपेतकजनं दैपानुविरहकार्यादिभावः पुत्रेति तन्मे तया कर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं कवैवास्मि कवैवास्मि आज उसका जेर चल रहा है। आज भी बसंत पंचमी ही लोग मान रहे हैं। नित्य काल में तो सब समय नित्य काल ही नित्य है, इसलिए आज भी बसंत पंचमी बन सकती है। बसंत पंचमी के संबंध में कल हमने कहा और यहाँ पर वैष्णव लोग बहुत तैयारी में है, 5-6 दिनों से तैयारी सब के संबंध में ये लोग भी बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग रघुनाथ दास गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के संबंध में थोड़ा थोड़ा बोलिए। अब मुझे सारा दिन व्यस्त रहने से कुछ तमाम सा होता, इसलिए आप लोग थोड़ा पहले एक आदमी रघुनाथ दास को शाम के समय में कुछ कुछ हिंदी भाषा में बोलने का प्रयास पंडित जी बोलेगा, क्योंकि देखो इधर घर में पॉइंट एकदम उठ गया, एकदम नपी चुली हुई, बस उन्हीं के संबंध में बोलो, कोई इधर उधर न जाए। देखो तो प्रैक्टिस करो तो रघुनाथ दास जो शास्त्र में लिखा है वही बोलो। आप भोग की लालसा इत्यादि रखते हुए भजन मत करो, भोग की लालसा से दूर रह करके मोक्ष की लालसा और वैकुंठ की लालसा, द्वारका और अयोध्या इत्यादि की सब लालसाओं को प्रत्याग करके अपिरति व्योमनयनी लक्ष्मीपतिम इनकी भी लालसा को छोड़ करके एकांत रूप में राधा कृष्ण का भजन करो। प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ सकते हैं, घर बार बार सब छोड़ देंगे, किंतु अपने प्रतिष्ठा की भावना नहीं छूटती। प्रतिष्ठा की लालसा आशा प्रतिष्ठाशा यदि भजन करना है तो इस प्रतिष्ठा की आशा को भी छोड़ देना पड़ेगा। विशेष करके गुरु से प्रतिष्ठा मत चाहो, यदि प्रतिष्ठाओं से चाहते हो तो तुम मरा, उनका शासन स्वीकार करो और संसारिक प्रतिष्ठा को सुकरीर विष्ठा ऐसा समझो। यदि भजन करने की लालसा है उसको गधे के मूत्र के समान अत्यंत खार और अपने लिए अत्यंत दूषित समझ करके उसका अंतर से प्रत्याग करो। यदि भगवान का भजन कर रहा हो, यदि तुमको भगवान की भजन करने की लालसा है तो रूप गोस्वामी की जो बतलाई हुई जो 5 पंचामृत हैं उनको ग्रहण, तद इज्ञाख्यान ध्यान नति श्रवण पंचामृतम ग्रहण, इसका तुम ग्रहण करो। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के सहस्त्रों उपदेश हैं भजन करने के लिए, अपने जीवन में उन्होंने आचरण किया। राधा कुंड में या ब्रज में कैसे रहा जाता है उन्होंने दिखलाया और दिन रात उसी में विभावित कैसे रहते थे ये सब दिखलाया है। इसलिए भजन करने की लालसा तो अच्छी तरह से उनके उपदेशों को समझना चाहिए। जब एक बात उनकी कह नहीं सकते हैं उनकी गुणावली नहीं कर सकते हैं, तो डूब करके मरना ही अच्छा है हमारे विचार से। क्या भाई, दिन रात उसमें निविष्ट रहना चाहिए। उनके गिरावनी कहने के लिए, वर्णन करने के लिए लाख जीवा होनी चाहिए। हमारा पर्यटक महाराज जी है, जानते हो पर्यटक महाराज जी को, परम वैष्णव है। उसको हरिकथा कहने की ये शुभानंद है, हरिकथा कहने की इतनी लालसा त्रिदंडी महाराज है। उनको यदि हरी कथा न कहने दिया जाए तो मन खराब हो जाएगा, रोने लग जाएंगे और खाना पीना छोड़ देंगे, मन खराब हो जाएगा। और कथा भी सब बोलते हैं, दिन रात उसका अनुशीलन करते हैं, सुनते हैं। उसी तरह से यदि वैष्णव का चरित्र नहीं बोलेगा, उनके उपदेश नहीं सुनेगा, उनको बोलने की यदि ये नहीं रहेगी धारा प्रवाह रूप से, बोलने की उत्कंठा नहीं रहेगी, तो मठ में वास करना और न करना बराबर हो जाएगा। खूब उत्कंठा के साथ में, उत्साह के साथ में सब वैष्णव का चरित्र सुनना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। उनमें से क्या क्या चीजें हम ग्रहण करना सकते हैं, ये सबका पूरा विचार करना चाहिए। नहीं तो फिर भजन ही नहीं होगा। जड़ पदार्थ की भांति हम नहीं आए हैं, इसलिए खूब परिश्रम करना पड़ेगा दिन रात। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के संबंध में कुछ हुआ, शायद उन्हीं का है, राधा पदम भोज धोली, राधा पदम भोज धोली,
अनारद्ध राधा पदम धोली, मनाशुक्त बिंदा तुविं तत् पदांकम,
असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान, उत्कंठा सिंधु रसास्यावगाह, उत्कंठा दर्श
भजामि राधा मरविंद।
ये विलाप कुष्मान जली है, विशाखानंद स्तोत्र है, और हजारों की शिक्षाएं हैं।
प्रेमम भज मकरंद
तो ये सब चीजों को हम लोगों को जानना चाहिए और भजन में प्रविष्ट होना चाहिए। अनर्थों को दूर करने की चर्चा करनी चाहिए, क्रमशः तप निष्ठा। आज का दिन उनका आविर्भाव तिथि है, उस आविर्भाव तिथि में उनके जीवन चरित्र का हम पर्यावलोचन करेंगे। पर्यावलोचन माने क्या, पूरा विचार करके देखेंगे और कैसे उसको हम ग्रहण करके अब उसी तरह से भजन करने की चेष्टा करेंगे, उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे भजन करने, तब तो ये भजन में उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। खूब उत्साह, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म परमात्मा, ये सब होना चाहिए। आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भी आविर्भाव है कि
तिरोभाव।
बोलो, हो रहा है इसलिए संक्षेप में पांच पांच मिनट बोलना भी सीखो सभी।
ओम अज्ञान तिरांधस्य वैनंदन सलाकरात् चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
कल तुम लोग सभी रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाएं अद्वैताचार्य जी का जीवन और उनका उपदेश सब लोगों से पूछेंगे, जो नहीं बतलाएगा उसको एक घंटा के लिए खड़ा कर देंगे।
मैं सबसे पहले शिक्षा विपाद पद्म में अनंत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित वैष्णवृंद, गौर भगवान सज्जन वृंद और मातृमंडलीय भाई गुरुवन से वंदन करता हूँ। सब लोग उन पर कृपा स्वीकार करें कि श्री महाराज जी के आदेश है, निशान के बारे में कुछ कहना इसके मैं उनका गुणगान कीर्तन कर सकूँ। श्री चक्रवर्ती तिरोभाव तिथि है, विरह तिथि, विरह अर्थात विशेष रूपे न रह विरह। विशेष रूप में जब कोई साधक अपने स्वरूप के सुधार के ही करते हैं, उनको विरह कहा गया। श्रील चतुर किसी महापुरुष को उनके विचारधारा के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर हम लोगों के लिए बहुत से ग्रंथ रचना की, बहुत ग्रंथ की टीका की। उनमें से हम देखते हैं कि भक्ति श्याम सिंधु के टीका, उज्जवल मुनि की टीका, श्रीमद भगवद गीता, श्रीमद भागवत ये सब लिखा, टीका लिखा। और उज्जवल मुनि, भक्ति श्याम सिंधु ये सब ग्रंथ थोड़ा सा व्याकरण का नाम पर असुविधा होती है, इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर हम लोगों के प्रति कृपा करके उज्जवल मुनि के किरण, भक्ति श्याम सिंधु के बिंदु और जीव भागवत के कोना रचना की। और श्री चक्रवर्ती ठाकुर बहुत से ग्रंथों में से श्री माधुर्य कादम्बिनी, ऐश्वर्य कादम्बिनी, रागवत्म चंद्रिका, ब्रजवीति चिंतामणि, प्रेम संकुट, गौरवन चंद्रिका, तवामृत लहरी, संकल्प कल्पद्युम, सुलभ कथामृतम इत्यादि रचना की। उनमें से हम जैसे एक ग्रंथ को ले लें माधुर्य कादम्बिनी, उनमें भजन के प्रथम स्टेज से अंतिम स्टेज तक वर्णन किया है। अब कैसे हम आगे भजन राज में बढ़ सकते हैं इसका भी उपदेश दिया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा माधुर्य कादम्बिनी पर प्रकाश डाल रहे हैं। श्री चक्रवर्ती ने दिखलाया प्रथम दृष्टि में कि भक्ति सही भक्ति होती है। ये भक्ति कहाँ निवास करते हैं? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति कैसे होती है? भगवान के भक्त हैं उनके संग से होता है, क्योंकि भगवान के ये भक्त उनके अंदर स्वामित्व साधन के वृत्ति उनके अंदर है, इसलिए भक्ति भक्त के हृदय में विराज करती है, इसे भक्त के संग होने पर उनको भक्ति लाभ होता है, इसलिए हमें भक्त का संग करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया सिद्धि भक्ति बानेति संशयच्युत सेविनाम निःसंशयस्तु भक्त परिचय रतात्मनाम। कोई भगवान का सेवा करें उनको सिद्धि हो भी सकता है, नहीं भी संदेह है।
सिद्धि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है।
सिद्धि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, संशय है। किंतु भगवान के भक्त हैं उनका सेवा करने पर सिद्ध यानी कृष्ण प्रेम हस्त करतल रहते, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दिखलाया प्रथम दृष्टि में। द्वितीय दृष्टि में दिखलाया भजन क्रिया, पहले वो साधु संग भक्ति से भक्ति होती है, ये दिखलाया। और गुरु पदार्थ का, गुरु पदार्थ का भजन करेंगे। भजन क्रिया दो प्रकार के हैं, निष्ठिता और अनिष्ठिता। भजन क्रिया में निश्चल बुद्धि के नाम ही निष्ठिता, निष्ठिता भजन क्रिया। जब तक इस प्रकार बुद्धि निश्चल न हो जाए, अटल न हो जाए, तब उनको अनिष्ठिता कहा गया। ये अनिष्ठिता भजन क्रिया छह प्रकार हैं, उत्साहमयी, घनताला, गुण विकल्प, तरंग रंगिनी, विषय क्षमा, नियम क्षमा, विषय संग्रह। उत्साहमयी अर्थात जब हम अगर भजन शुरू करते हैं तो पहले बहुत इच्छा थी, दो दिन में भगवान को लाभ कर लेंगे। जैसे उदाहरण दे चक्र ठाकुर ने किसी बच्चे को स्कूल भेजा गया, स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उसने और सीट लिख लिया, आके कह रहा है माता जी मम्मी मैंने आज और लिख लिया, इतना दिन भाग रहा है, मानो समस्त विद्या को आयत्त कर लिया। फिर दूसरे दिन स्कूल में गया, जब मास्टर ने उनको ई लिखने दिया तो बड़ा ई तो तेरा मैं लिख ना सके, एक तमाचा दे दिया मास्टर ने। अब घर में आके रोना रोना सा हो गया, खाने की इच्छा नहीं, पढ़ने की इच्छा नहीं। ऐसे जब पहले हम भजन करते हैं पहले बहुत उत्साह रहता है, इसे उत्साह में कहा गया। और भजन करते समय जब तत्व उसमें हमारा प्रवेश नहीं होता है तब तो हमारा भजन करने की इच्छा नहीं होती है। ग्रंथ अनुश्रम करने की, ऐसे तात्विक विचार सिद्धांत पूर्ण हरिद्र सुनने की इच्छा नहीं होती है, इसको कहा गया घमतरला। उसके बाद बुढ़ विकल्प, भजन करने शुरू कर दिया फिर सोचते क्या करूं, भजन करने पर क्या होगा, इसमें लाभ ही क्या, फिर सोचते कैसे भजन करूं, घर छोड़ के आ जाऊं या घर में रहूं। ओहो, हम देखते हैं भागवत में कि भरत महाराज जी के लिए कहा गया कि जीवो जागुस्तज्जान दारासतान सुहित राज्य विदिश पिस जुवत व मलगत तत्त जत्तम श्लोक लालस भरत महाराज जी उत्तम श्लोक अर्थ उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका वंदना की गई है इस भगवान के लिए जीवावस्था में ही घर छोड़ दिया। जीवावस्था किस प्रकार जागुस्तज्जान दारासतान जो अवस्था छोटे छोटे बच्चे के आधी आधी मीठी मीठी बोली पत्नी की प्यार ये सब छुड़ा नहीं जा सकता है इसी अवस्था में भरत महाराज छोड़ दिया। तब हम क्या करें घर छोड़ दूं या गृहस्थ में रहकर भजन करूं क्योंकि अहम पितरो वृद्ध हूँ मेरे माता पिता वृद्ध वृद्ध है उनको छोड़कर मैं कैसे भजन करूं। इस प्रकार मन में ये संकल्प विकल्प है इस संकल्प विकल्प का भाव को ही बुढ़ो विकल्प कहा गया। और नियमक क्षमा कभी सोचते हैं कि हम दो जन 1,00,000 प्रणाम करेंगे कभी सोचते हैं भागवत का एक अध्याय अनुशीलन करेंगे ऐसे विभिन्न प्रकार नियम बांध लेते हैं लेकिन अपने असमर्थ के कारण इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसे नियम करके उनको नियम को रक्षा न करने के कर पाने का नाम नियमक क्षमा नियम अक्षमा नियमक क्षमा। और विषय संग्रह हम भजन करते हैं कि मन विषय में चला जाता है न चाहने पर भी अनादिकाल के संस्कार की वजह से मन हमारा उसमें रम जाता है इस प्रकार कभी विषय में कभी इनको जबरदस्ती खींच करके भगवान भजन में लगाना पड़ता है। संग्रह का युद्ध इस भजन क्रिया में विषय के साथ साधक का युद्ध होता है उनको विषय संग्रह कहा गया। अब तरंग रंगिनी तरंग रंगिनी में कि जिस समय साधक साधन करते करते कुछ आगे बढ़ने पर विषय भजन होने के बाद सबसे जनानुभक्ति होगा जनानुभक्ति होने पर उनको संपद लाभ होगा उस समय साधक अपने भजन तरंग रूप में देखता है इसलिए तरंग रंगिनी कहा गया। और निष्ठा भक्ति निष्ठा भक्ति उत्पन्न होने के पहले और कुछ रुकावट है लय दीक्षे अप्रतिपत्ति कसा रसासार लय अर्थात उत्तरोत्तर श्रवण कीर्तन स्मरण में ही रहने का नाम लय विक्षेप श्रवण कीर्तन के समय ग्राम्य वार्ता या व्यवहारिक वार्ता को विक्षेप कहा गया। लय प्रतिपत्ति श्रवण कीर्तन में लय विक्षेप न होने पर भी बहुत समय ऐसा होता है कि उन्हें बैठने में मन नहीं लगता है सच ऐसा लगता है उठ के चला जाऊं इस भाव को कहा गया अप्रतिपत्ति। कसाय और रसासार इसके बाद कसाय रसासार दिया है निश्चिता भक्ति। ये निश्चिता भक्ति दो प्रकार साक्षात भक्ति विधायिनी और तत्त्व वस्तु विधायिनी। साक्षात भक्ति विधायिनी बहुत प्रकार होने पर भी काय की वाची की मानसिक के रूप में 3 प्रकार हैं। इसका रचना करते ही जब ठाकुर अपराध दिखलाया सेवा अपराध और नामापराध। सेवा अपराध 2 प्रकार के होने पर भी 32 प्रकार दिखलाया और नाम अपराध 10 प्रकार इनमें से वैष्णव अपराध सबसे अधिक बतलाया। वैष्णव अपराध इतने भयंकर हैं जिनके हम थोड़ा आलोचना करने पर हमें पता चलता है समय का अभाव है फिर भी एक दो उदाहरण केवल टच कर देता हूँ। सचिमा कहता ये अद्वैतनी दैत्य है हमारे एक लड़के को ऐसे लड़के को ऐसे विश्वरूप जितना सुंदर लड़का उनको संसार से बेजगह करा दिया महापुण्य का उनको संसार से भेजा करा दिया। सुकृति उत्थ अपराध उत्थ ज्ञात अज्ञात सामने अपराध होता है उनको अपराध उत्थ। और भक्ति उत्थ भक्ति उत्पन्न होने के पहले अपराध भक्ति से जो हमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलता है उनको अपराध उत्पन्न सुकृत भक्ति दुष्कृति भक्ति भक्ति उत्थ अपराध कहा गया। इसके बाद निष्ठा का लक्षण बताया उत्तरोत्तर श्रवण कीर्तन में जब निश्चल बुद्धि है उनको निष्ठा कहा गया। और निष्ठा के बाद रुचि अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इसमें उत्तरोत्तर इच्छा करने के टेस्ट को रुचि कहा गया। पहले पहले स्टेजों में जबरदस्त मन को खींच के लाना पड़ता है, लेकिन इसमें इतना कष्ट नहीं होता है। श्रवण कीर्तन में पहले पहले अवस्था में कष्ट लगता है, इस समय कोई कष्ट बोध नहीं होता है। और रुचि के बाद आसक्ति, रुचि भी दो प्रकार दिखलाया और आसक्ति, आसक्ति दो प्रकार है। इसके बाद भाव और प्रेम, समय संक्षेप है, मैं आप लोग और महाराज के बीच में अवधारण बनते हुए मेरा मैं अपनी अभिराम धारा को विश्राम देने के लिए पंचा पर्वत निपासन दुर्भय वचन परिदानंद पावन भो वैष्णव भो नमो नमः।
विश्राम देने के संबंध में तो एक तरह से थोड़ा बहुत उनका जीवन चरित्र बतलाया गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूर्वी बंगाल में फरीदपुर जिले में कहीं प्रकट हुए थे। बचपन में ही, थोड़े उम्र में ही अपने गुरु से समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में वृंदावन में चले आए। घर वालों ने इनके गुरु के घर वाले इनके गुरु के पास पीछे पड़ गए और गुरु जी से ये अपनी विवाह शादी करके आया है, घर में स्त्री है, इन्होंने तो आदेश नहीं लिया, इसलिए उनके आदेश लेकर के आना चाहिए। गुरु जी ने देखा और थोड़ी सी परीक्षा ले ली जाए, इनको बुलवाया और बोले तुम जाओ घर पर और अपनी स्त्री का आदेश लेकर के आओ। ये बड़े दुखी हुए, तभी ये गए वृंदावन से लौट करके गए, घर में एक दिन रहे। स्त्री इनकी बड़ी प्रेम से मिली, सारी रात भागवत की कथाएं बड़े प्रेम के साथ में सुनाए और प्रेम से वो सुनती रही। सवेरा हो गया, अब मैं वृंदावन जा सकता हूँ, तो वो जो सभा से सुनाया था इन्होंने, उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। नहीं, सचमुच में भगवान का भजन करना ही, किसी के भजन में बाधा नहीं होना उचित। इसलिए उसने, मैं तो उतनी भजन नहीं कर सकती, तो आप इतना भजन छोड़ करके क्यों आएंगे, आप जाइए भजन कर। बस भजन में सिद्ध थे, ऐसे सिद्ध थे कि कभी कभी ये पार्थिकीय भाव की और स्वकीय भाव के विवाद में इनको कुछ स्वकीय भाव वालों ने इनको जान से मार डालना चाहिए, तो कहीं कुंज में छिपे हुए थे। ये जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मारने वाले वहां पर छिपे हुए हैं, बस झट हाथों में थाल ले लिया और गोपी का रूप धारण कर लिया और मुस्कुराते हुए बड़े सुंदर गोपी भाव से और उधर आगे बढ़ गए, जहां पर कि घना जंगल था, यहां पर पार करना था, जहां पर छिपे थे। जब वहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने कहा, जे लाली, विश्वनाथ चक्रवर्ती को देखा? हाँ। मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद में देखा, जिसे वही गोपी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बन, पहले इसको देखा विश्वनाथ को और फिर देखा गोपी के रूप में उसको और फिर इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में देखा। ये कोई जरूर सिद्ध महात्मा, बस उनके चरणों में जाकर के क्षमा मांगा। आपका जो ये विचार है प्रक्रिया का कृष्ण के प्रति भावना, यही सर्वश्रेष्ठ है, उसको माना। तो इस तरह से ये सिद्ध महापुरुष, इनके जीवन की एक घटना यह है कि जब ये वृद्ध हो गए तो जयपुर के नरेश इनके पास में आए या किसी को भेजा और बोले, जैसे गोविंद जी के यहाँ राधा जी की मूर्ति थी, उसको निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने और रामानंदी संप्रदाय के आचार्यों ने हटा दिया है, और कहा गौड़ी वैष्णव कोई संप्रदाय ही नहीं है और राधा जी का कृष्ण का कोई शास्त्रीय विवाह का कोई भी वर्णन कहीं भी शास्त्र में नहीं है, इसलिए राधा जी उनके साथ में नहीं रह सकती। यदि सप्तभामा रुक्मणी प्रभृति हो तो रखा जा सकता, नहीं तो यह शास्त्रीय विधि नहीं है। और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का कोई उल्लेख ही नहीं है कहीं, चार संप्रदाय में, इसलिए आप लोग उनसे प्रार्थ करें अथवा वो स्थान छोड़ दें निम्बाकी और रामानंदी वैष्णव के लिए। वहाँ पर सीता जी का और रामचंद्र जी का और राधा और कृष्ण का मंदिर था, उन्होंने सामने वाले मंदिर से राधा कृष्ण के विग्रह को हटा करके और राम और सीता के विग्रह रख दिए, उनको साइड में कर दिया। अब इनसे जब कहा गया कि उन्होंने कहा भाई अब मैं वृद्ध हूँ और मैं क्षेत्र संन्यास में नहीं गया, अब वृंदावन से कहीं नहीं आऊंगा, अब जो हूं मैं क्या करूँ, तब उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को अपने छात्र को वहां पर भेजा अपने किसी शिष्य के साथ में, और वहां जाकर के उन्होंने गोविंद भाष्य की रचना की और पंडितों को उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया और राधा जी की स्थापना की और राधा जी कृष्ण के साथ में रहकर उनकी पूजा इत्यादि की सब प्रकार से व्यवस्था करके फिर वहां से वृंदावन से। ये हम लोग का सांप्रदायिक एक और संप्रदाय के ऊपर में विजय ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा ही संभव हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने रूप गोस्वामी के समस्त ग्रंथों को सरल और सहज रूप में समझने के लिए और उनके भजन प्रणाली को बतलाने के लिए भक्ति रसामि सिंधु बिंदु उज्ज्वल विन्मणि किरण अभिहत भगवतामृत कणा, ये जब वो पढ़ते थे अपने गुरु के यहाँ अपने देश में कौन सा सैयदाबाद, वहीं पर उन्होंने पढ़ते समय लिखा, इसलिए मालूम पड़ता कि ये महापुरुष थे, साधारण आदमी नहीं। और इनकी वंदनाओं में इस स्तुतियों में इतना सुंदर सरस अलंकृत भाषा, ये कोई भी व्यक्ति पढ़ करके मुग्ध हुए बिना रह नहीं सकता, सरल रूपों में उनको समझ सकते हैं। यदि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं आते तो श्रीमद् भागवत की रश्मि जो टीकाएं हैं आज नहीं होती, विश्व उससे वंचित रहता। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमारे संप्रदाय के एक मूल तारका नक्षत्र हैं, इसलिए हमारा संप्रदाय नितारिणी है और रहेगा। इसे इनके संबंध में और किसी दिन बतलाऊंगा, आज अत्यंत अधिक समय हो गया है, आज अभी हम लोग कीर्तन में जाएंगे, कीर्तन का भी समय हो गया है, सब लोग चलेंगे। कल अद्वैत सप्तमी है,
व्रत उपवास,
कल हम लोग उपवास करें, आप लोगों में से जो उपवास करना चाहें एकादशी की भांति उपवास कर सकते हैं, हम लोगों के मठ वाले सभी लोग और करना चाहिए। परसों उसका कारण होगा 9 बजे या कितने
59 तक,
और अद्वैताचार्य से कल उनके सिद्धांत के संबंध में, उनके विचार के संबंध में, उनके अपराधिक जीवन चरित्र के संबंध में आप सभी लोग तैयार हो, कल उन लोगों से मैं पूछूंगा, तब उन बच्चों से पूछूंगा जो कि लोग बोलते नहीं, उन सब से
नमो महापतनाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरजगत्कृते।
अद्वैताचार्य की आविर्भाव तिथि अद्वैत सप्तमी, महाप्रभु जी के परिकर सब समय कीर्तन में, चरित्रामृत में और सब ग्रंथों में उनकी महिमा लिखी गई, कुछ न कुछ प्रतिदिन उनके संबंध में आलोचना होती है, इसलिए सभी लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आज सब लोग उनके संबंध में बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, जैसे कि वाणी शुद्ध हो और भगवान की भक्ति हो। वैष्णव का लीला चरित्र वर्णन करने से और श्रवण करने से भक्ति होती है। अद्वैताचार्य जी तो महाविष्णु के स्वरूप हैं,
और भक्तों में परम भक्त हैं, इसलिए इनका चरित्र वर्णन की करने की चेष्टा। अभी सब आए नहीं है क्या? वो बीमार पड़ गए हैं सर, तो नहीं आए क्या? कौन कौन उसको तो क्या नाम है उसका? पांडु विजय कहाँ है? सो रहा है, उसका कान पकड़कर तो खा लो। हाँ जरूर। वैष्णव सभा में ये सब नहीं। कैसे उन्होंने टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, क्या स्वप्न देखा, ये सब नहीं। चैतन्य चेतामृत में तत्वों के संबंध में बताया गया, ऐसा आप लोग बोलने की और पढ़ने की चेष्टा करें, तो दूसरे ग्रंथों सहजियों के ग्रंथ पढ़ने से ही ऐसा होगा। आजकल सब लोग एक एक पुस्तक ले लेते हैं और पढ़ते हैं, ऐसी हो जाती है। चैतन्य चेतामृत देखो, पढ़ो, हम लोगों के सांप्रदायिक जो तथ्य के ग्रंथ हैं उनको देखो। चैतन्य चैतामृत में इन सब लीलाओं का वर्णन है, क्यों जानबूझ कर कहिए ये सांसारिक बात, इसलिए उनका तत्व और उनकी शिक्षा, महाप्रभु जी से संबंध, नित्यानंद प्रभु से संबंध, जगत में उन्होंने क्या क्या किया, और अद्वैत इसलिए विष्णु से या भगवान से एक हैं इसलिए अद्वैत, आचार्य इसलिए भक्ति तत्व के आचार्य हैं इसलिए आचार्य, ये सब और कौन कौन सा काम किया ये सबको बढ़ा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम सारा जीवन तुम लोग किस्सा और कहानी तोतार मैंने की कहानी में रह जाएगा, इसलिए ऐसा सब नहीं। तब सिद्धांत भक्ति तत्व विचार किसमें है? बोलो तुम्हें, बोलो देता हूँ और इसके बाद में बाकी के नए घर पर आज कीर्तन है, वहाँ सब लोग चलेंगे कीर्तन। आज अद्वैत सप्तमी है, इनके जन्म इत्यादि के संबंध में और सब बातें बच्चों ने ब्रह्मचारियों ने बतलाया। मैं संक्षेप में दो एक बातें बतलाता हूँ। अद्वैताचार्य जिसमें श्री हट्ट में थे, उसमें उनके पिताजी राजा के कर्मचारी थे, अद्वैताचार्य देवी को प्रणाम नहीं करते। राजा और उनके पिता और सब लोगों ने विचार के जी क्यों नहीं करते, उसे बार बार कहते जिसे तुम देवी को प्रणाम करो। उन लोगों के कहने से जब उन्होंने प्रणाम किया तो मूर्ति द्विखंड होकर के एकदम उड़ गई। क्यों उड़ गई? इसलिए अद्वैताचार्य सदाशिव तत्व है, ये समझो। सदाशिव और विष्णु एक तत्व है, उनका नित्य धाम है, विद्या से उस पार रहते हैं, भगवान के समस्त आदेशों को पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रह्मा जी सब आदेशों को पालन नहीं कर सकते, और कोई जगत में ऐसा नहीं है जो भगवान के सब आदेशों को पालन कर सके। हरि और हर दोनों एक आत्मा है, कृष्ण हरि हैं और शंकर जी हर हैं। कृष्ण के अत्यंत प्यारे हैं, इसलिए यदि कोई कठिन समस्या आ जाती है तो दूसरे उसका पालन नहीं कर सकते। जैसे कृष्ण को बुखार हुआ और उन्होंने रानियों से कहा कि तुम लोग भक्त हो, नारद जी से कहा अपनी चरण धूलि दे दो ठीक हो जाऊंगा, उन्होंने नहीं दिया। सत्यभामा रुक्मिणी तक किसी ने दिया, किसी भक्त ने नहीं दिया। किंतु जब ब्रज में गए तो गोपियों से कहा तो गोपियां अपने चरणों की सब धूल इकट्ठी करके दे दी, हम नरक में जाएंगे, किंतु वो ठीक है। ऐसे ही ऐसा भक्त बहुत श्रेष्ठ होता है। शंकर जी अर्थात ये हमारे अद्वैताचार्य जी वही सदाशिव तत्व हैं, इसलिए जब जब जरूरत पड़ती है, जब विष खाने की जरूरत पड़ती है, अमृत जब निकलता है समुद्र से, तो सब देवता लोग ललायित होते हैं, हमको हम दीजिए, हमको दीजिए, सबको बांधिए। विष जब निकला तो सभी भग गए, तो अंत में विष्णु को बुलाना पड़ा, किसको, शंकर जी को। शंकर ने उस विष को सहर्ष पान कर दिया, किंतु देखा जाए हमारे हृदय में तो भगवान है, तो उसको गले में अटका करके रख दिया, उनका गला जल करके नील बन गया, इसलिए तब से वो नीलकंठ कहना लेंगे। यही सदाशिव ही भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पहले शंकराचार्य के रूप में उदित हुए थे, यही सदाशिव ही अपने एक अंश से। कृष्ण ने इनको आदेश दिया, देखो हलाहल पान करना है। वो हलाहल पान क्या है, जगत के जीव अपनी तुच्छ आराधना से भगवान को अत्यंत व्याकुल कर देते हैं। हमको पुत्र नहीं है, पुत्र दो, धन नहीं है, धन दो, दौलत दो, और हमारी उपासना करते हैं। मैं बहुत उनकी उपासना से बहुत मैं घबराता हूं, तुम जाकर के हमें छिपाओ, और ऐसे संसार के कामी लोग, भोगी लोग हमारी उपासना न कर, उनको ये बतला देना कि मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो, सभी ब्रह्म हो, और अपने को ब्रह्म माने, फिर भगवान की कोई जरूरत नहीं रहेगी। पहले तो उन्होंने कहा कि प्रभु कहां जीवों का कल्याण होगा, आपकी भक्ति करेंगे और मैं ऐसे करूं। उन्होंने कहा जिसे इसी की समय जरूरत है, जगत में बहुत बात छा रहा है, इसको हटाना है, और ऐसे ऐसे जो भजनहीन हैं उनको थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए। इसलिए ऐसे काम ये करने वाले, ये भगवान के समस्त प्रकार के आदेशों को पालन करने वाले, ये इसमें निकले तीर्थों में जाने के लिए। प्रत्येक हिंदू ही कुछ परिणत वयस में तीर्थ यात्रा, विशेष करके गया, वृंदावन, द्वारका, अयोध्या, मथुरा और सप्तपुरियों में और सब जगहों में वो तीर्थ के लिए जाता है। ये तीर्थ यात्रा के लिए निकले करीब करीब 60-65 वर्ष की उम्र में, अभी तक महाप्रभु जी का जन्म नहीं हुआ था। तीर्थ यात्रा में वृंदावन में, वृंदावन की कहानी उसने बतलाया कि यहीं पर मदन मोहन की सेवा उनको मिली थी, और पीछे से सनातन गोस्वामी ने उसी मदन मोहन को मथुरा के चौबे से लेकर वृंदावन में मदन मोहन टेर में,
मदन टेर
टेर में उनकी स्थापना की। वही मदन मोहन अभी तक उनकी सेवा होती है
करौली।
यह द्वैताचार्य ने प्रकाशित किया था, इसके बाद में सनातन गोस्वामी ने उनको प्रकाश करके इनका मंदिर इत्यादि बनाया। जब यहाँ से तीर्थों में घूमते घूमते अयोध्या इत्यादि होते हुए ये दरभंगा में पहुंचे, जहाँ पर तो सीता जी का जन्म हुआ था, मिथिला में पहुंचे। वहाँ पर जब गए, आज से 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले की बात, वहाँ पर उस नगर के बाहर में एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध किंतु तेजस्वी अत्यंत गौर वर्ण एक व्यक्ति को देखा, आंख से आंसुओं की धारा गिर रही है, सिर पेड़ से ऐसे लगा रखा, मन देह की सुख बुद्धि नहीं, और आंखों की से जो धारा भरा उसमें वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आंख भी बंद है, तातल सई कत बार बिंदु सम सुतमित रमणी समाधि। तोही विसरिपुनी
ताहे समायलु
ताही समर्पुनी अवरुज हवे तत चतुरानन मरि मरि जाओ तुहान आदि अवसाना जुवा काले
जुवा का
रमणी
भोगवश जौवने घरपाती बैठलु
दूसरा दूसरा उन्नमिन जी का संस्कार
ना ना छे उन्नले कितन थला छे
इस तरह से उन्होंने कीर्तन किया कीर्तन कर रहे थे आंखों से आंसुओं की लड़ी चल रही तापल शरीर वृद्धावस्था ये वहां के मिथिला नरेश के राज पंडित थे इनका नाम है विद्यापति ये मैथिल कोकिल कहलाते हैं कोकिल ऑफ मिथिला मिथिला कोकिल बहुत ही अद्भुत कवि थे इतना सुंदर अलंकार अनुप्रास युक्त इनकी कविताएं होती थी सभी लोग सुनने सुन करके मुग्ध हो जाए करें जिसे मेरा जन्म यहां हुआ मनुष्य का जन्म पाया अब वृद्ध हो तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी सम मैं सुख के लिए शादी की बड़ी सुंदरी औरत के साथ में शादी बच्चे हुए धन की कोई कमी नहीं राजाश्रय मुझे प्राप्त था सुख से जीवन कटा किंतु मैंने सोचा था हुआ किंतु विपरीत तातल सैकत बारी बिंदु तातल माने होता है गर्म धूप में या भड़भूजे के यहां जो कोई चीज भूनना होता है गर्म बालू टकपक करती है और उसमें छोड़ देते हैं और वो फट 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 करके एकदम खिल जाता है भड़भूजे के यहां देखो चना डाल दो गेहूं डाल दो मकई डाल दो तो एकदम कैसा सफेद एकदम भर जाएगा ऐसे ही ये संसार मरुभूमि है और बालू विपत्तियां ये सब तरह तरह के कष्ट जन्म मरण दुख शोक तरह तरह की विपत्तियां और कामनाएं से ये जल रहा है ये विश्व उसमें जीव भूल जाता है एक बिंदु मधु से चारों तरफ मृत्यु मंडरा रही है ना चारों तरफ मृत्यु मुख बाय और ऊपर से मधु की बूंद पड़ रही है ओहो क्या मधु तो ये संसार मानो तपा हुआ बालू है और उसमें एक बूंद के समान क्या है सुत मित रमणी सुत पुत्र का कन्या का सुख स्त्री का सुख परिवार का सुख ये कैसे है जैसे तवा गर्म है या बालू उसमें एक बूंद यदि पानी गिर गया तो उसका कोई पता लगेगा जी कहां गया तवे पर दे तो छन उड़ जाएगा बाष्प होकर के उसका कहीं पता नहीं लगेगा इसी तरह से मनुष्य के जीवन में आत्मा के संबंध में ये सुख कैसा है मरुभूमि बड़ी विशाल थार डेजर्ट और एक बूंद पानी उसमें गिरा कहीं पता लगेगा उसका कि कहां गया ऐसे ये सुख है संसार का मैं बचपन में माता पिता के गोदी में खेला बड़े आराम से युवावस्था में विद्या इत्यादि का पठन पाठन किया फिर किसी विषय के लिए क्वालिफाइड हुआ और संसार करने लगा विवाह हुआ शादी हुए बाल बच्चे सब हुए उस समय में मतवाला था अपने जौवन में कुछ दिनों के बाद में बुढ़ापा घेर लिया और खांसियां होती हैं दम्मे होते हैं पेट के रोग है दांत टूट गए केश पक गए अब मुझको कोई नहीं पूछता, अब राजस्य भी नहीं, बच्चों का अब स्नेह नहीं, मैं एक असहाय बूढ़े बैल की भांति, जबकि वो काम करने जाए नहीं रहता, गोबर करता रहता है और सड़क के किनारे सो जाता है और उसकी पूंछ मरोड़ करके यहाँ के मुसलमान गाड़ी वाले और दूसरे डंडों से पीट करके उसे उठाने की चेष्टा करते हैं, बेचारा उठ नहीं पाता, ऐसी दशा मेरी आई। कितने जन्म ऐसे ही गए और कितने जन्म आए, इनको भोगता रहा और मेरा कहां क्या किनारा होगा। कत चतुरानन मरी मरी जाओ, हे प्रभु और मैंने सुना है कि आप दयालु हैं और आपकी था पाने के लिए कितने ब्रह्मा कितने शंकर और कितने क्या हो जाते हैं, किंतु आपका स्मरण नहीं कर पाते और मेरा अंतिम समय है और मैंने संपूर्ण रूप से आपके चरणों में डाल दिया, आप कृपा करें न करें बस आप ही का भरोसा और किसी का भरोसा, ये कहते हैं। ये कौन महापुरुष है इतना सुंदर कविता करता है और ऐसा सुंदर व्यक्ति, वृद्ध होने पर भी बड़ा तेजस्वी, उसके चरणों में गए और उसको प्रणाम किए, ये भी कम विद्वान नहीं थे और वो तो विद्यापति थे, और ये कौन है, सदाशिव है, सब विद्याओं में पारंगत, हरि से अद्वैत और भक्ति रस के आचार्य, किंतु उम्र में वो कुछ बड़े थे ये छोटे, उनको प्रणाम किया, बोले जी आप कौन है?